और यहाँ पर तन से मन से बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से हर एक रूप से आपका स्वागत हो रहा है, सुंदर शब्दों से हो रहा है। और हम विश्वास रखते हैं कि मन की स्थिति के साथ साथ तन भी स्वस्थ लेकर के आप यहाँ से जाएंगे और अपने मन को ज्ञान से भरपूर करके जाएंगे। तो आज के सत्र को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने आदरणीय मेहमानों को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमारी दियोनी शिंदे बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय भ्राता देवेश मिश्रा जी, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हमारे सत्र के चेयरपर्सन भ्राता प्रोफेसर एडी सिरदेश पांडे जी, आपका भी हम दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। होलिस्टिक एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की परिभाषा हम सभी जानते हैं। पर्यावरण मतलब जी सराउंडिंग्स। और जब भी हम पर्यावरण का नाम सुनते तो सबसे पहले हमें क्या याद आता है? बाहरी रूप का पर्यावरण, है ना। लेकिन हमने अध्यात्म में आकर ये जाना है कि पर्यावरण दो तरीके का होता है, एक होता है आउटर और एक होता है इनर। आउटर एनवायरनमेंट हम सभी जानते हैं जो कि 5 तत्वों से बना होता है, जल वायु अग्नि, बचपन से हम पढ़ते आए हैं और जिसका हम बहुत अच्छी रीति ध्यान भी रखते थे। इवन हम सभी तत्वों की पूजा भी करने लग गए, जल देवता वायु देवता ऐसे कर करके। लेकिन इसके चलते चलते हमने क्या किया, जो हमारा इनर एनवायरनमेंट था उसकी तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया और हमें मालूम भी नहीं था कि अंदर भी कोई एक पर्यावरण होता है और वो होता है एक एनर्जी, जिसको आप सबने सुना होगा, जिसको आत्मा कहते हैं। वो आत्मा सारा दिन अंदर ही अंदर एक एनर्जी को फ्लो करती रहती है ना, जिससे हम सुख शांति प्यार है ना शक्ति ये सब चीजें महसूस करते हैं। और यकीन मानिए जब हमारा अंदर का पर्यावरण संपूर्ण होता है, सुखद होता है, तो ही हम बाहर के वातावरण को पर्यावरण को अच्छा बना सकते हैं, अच्छा देख सकते हैं और उसको अच्छा बनाए रखने के लिए हमेशा सहयोगी हो सकते हैं। तो आज ऐसे ही विषय की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ, हमारे मेहमानों का पुष्प गुच्छों के द्वारा और बैजेस के द्वारा स्वागत करेंगे। पहले याद में है ना, ठीक है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले सभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे परमात्मा की याद में। आइए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा फूलों के द्वारा प्रकृति के साथ ही की जाती है, बुके के द्वारा हम स्वागत करते हैं आप सभी मेहमानों का। विशेष आप टाइम निकाल करके हमारे बीच पहुंचे, देश भर के अलग अलग स्थानों से। प्रोफेसर एडी शिंदे पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहन देवनी शिंदे जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। भ्राता देवेश मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमें बनाना है अपने अंदर की कुछ क्रियाओं को, कुछ सोच को बदल करके। देखिए हम सभी जो यहाँ पर बैठे हैं, हम सभी ने अपने जीवन में बहुत बहुत अच्छे अनुभव किए होंगे, किए हैं सभी ने, किसी के कम किसी के ज्यादा, लेकिन सब अनुभवी लोग बैठे हुए हैं। किसी के पास गृहस्थी का बहुत अच्छा अनुभव है, किसी के पास अपने कार्य का बहुत अच्छा अनुभव है, किसी के साथ बच्चों के साथ का बहुत अच्छा अनुभव है। लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो हम एक दूसरे को बांट सकते हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। तो हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत भी एक बहुत सुंदर अनुभव के साथ कर रहे हैं। मुझे एक अनुभव की बात को सुनकर के कहानी एक बात याद आती है। एक बार एक बहुत बड़ा शिप होता है, पानी का जहाज, और वो जो शिप होता है वो बहुत समय से अपना कार्य कर रहा होता है। एक दिन वो अचानक खराब हो जाता है। जब वो खराब होता है तो उसको शिप पर, आप सभी जानते हैं कि खुद ही कुछ लोग ऐसा होते हैं जो कि उसको मैनेज कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, लेकिन वो किसी से भी ठीक नहीं हो पा रहा होता है। तो फिर ये फैसला लिया जाता है शिप के जो अधिकारी होते हैं कि उसको किसी टेक्नीशियन को बुलाया जाएगा जो कि उसको ठीक करेंगे। तो एक व्यक्ति आए और उनके पास अपना 30 वर्षों का अनुभव था, तो उनको बुलाया गया कि आप इस शिप को ठीक कीजिए, इसके इंजन में कुछ खराबी है और ये चल नहीं रहा, हमने बहुत कोशिश कर ली है। तो उन्होंने देखा, पहले ओवरऑल उसका चेकअप किया जैसे वो कर सकते थे, फिर वो उन्होंने अपने कंधे से अपना एक छोटा सा बैग उतारा और उसमें एक छोटा सा हथौड़ा निकाल करके उसके पास गए, इंजन के पास, और वहां जाकर एक जगह पे ठक ठक किया, इंजन चल पड़ा ना। सब लोग बड़े खुश हो गए कि शिप चल गया, अब ये अपने कार्य पर चल सकता है। तो वो चला गया। थोड़े दिनों के बाद यहां से शिप से उन्होंने वहां पर एक रिक्वेस्ट की कि मेरी फीस दे दी जाए ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बताइए आपकी फीस कितनी है। तो उन्होंने कहा कि 2,00,000 रुपए मेरी फीस है ना। तो इधर से जो सब मैनेज करते थे उनका डिपार्टमेंट, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने जो इतनी फीस हमसे मांगी है इसकी पूरी डिटेलिंग आप हमें भेजिए कि आपने किस हिसाब से आपने 2,00,000 रुपए मांगे हैं, आपने एक छोटा सा हथौड़ा ही तो मारा था ना। तो उन्होंने पूरा डिटेल के साथ भेजा कि जो हथौड़ा मैंने मारा है उसके 200 रुपए हैं। कितने हैं? 200 रुपए हैं। बाकी कहाँ मारना है, कितना मारना है, उसके 1,99,800 रुपए हैं ना। तो कहते ये तो बड़ी अजीब बात है। तो कहते ऐसे थोड़े ना पता चल गया, मेरे 30 वर्षों के अनुभव में मुझे ये समझ आया है कि कहां पर कितना हथौड़ा लगाना चाहिए, आपको तो नहीं पता चल रहा था ना, है ना। तो हमें कितना किसको कितना देना है, कितना उसको जरूरत है, कितने में वो काम कर सकता है, चाहे वो मशीन हो चाहे वो कोई भी मनुष्य आत्मा हो। हम सभी को कुछ ना कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे देते हैं, ज्यादा ही लोगों को जल्दी चेंज करना चाहते हैं, चाहते सब कुछ जल्दी हो जाए, और जहां हमें जल्दी करनी चाहिए वहां हम स्लो हो जाते हैं। तो अनुभव जो होता है वो इस तरह से हमारे जीवन को बदल देता है, रुक ही चीजों को चला देता है। तो ऐसा ही अपने जीवन का बहुत सुंदर अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे बीच में है भ्राता देवेश मिश्रा जी। आप एक जियो साइंटिस्ट हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक महारत्न कंपनी ONGC, आप वहां पर आपने लगभग 40 वर्षों तक काम किया। वहां से 2017 में आप चीफ GM के तौर पर रिटायर हुए हैं, और उसके तत्पश्चात ONGC के एडवाइजरी बोर्ड के आप मेंबर भी हैं, और मुंबई यूनिवर्सिटी के आप विजिटिंग फैकल्टी भी हैं। आपके जो युगल हैं वो मुंबई हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, और वहीं से आपने 2015 में ज्ञान प्राप्त किया, और उन्हीं के साथ आपने भी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। तब से लेकर अभी तक इस ईश्वरीय ज्ञान के साथ अपने आप को जोड़ा हुआ है, अपने जीवन को सुंदर बना रहे हैं, औरों के साथ भी अपने इस अनुभव को साझा करते हैं। तो आज जो है हमारे बीच में अपना बहुत ही विशेष अनुभव हमारे बीच रखने जा रहे हैं आदरणीय भ्राता देवेश मिश्रा जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले हम सभी परमपिता परमेश्वर शिव बाबा को धन्यवाद देते हैं कि आज ऐसा मौका हम सबको मिला है, और कितना मनोहारी दृश्य चारों तरफ ज्ञान सरोवर का, और इस छटा के बीच आप सबका साथ, और इतना अच्छा टॉपिक आज का, होलिस्टिक एनवायरनमेंट विथ इनर लैंडस्केपिंग। इनर लैंडस्केपिंग खासियत क्या है? यहाँ बाहर चारों तरफ तो आप आउटर लैंडस्केपिंग देख ही रहे हैं, और जैसा सुबह इनॉग्रेशन के समय मोहन भाई साहब ने बताया कि यहाँ के किसी लैंडस्केप को डिस्टर्ब नहीं किया गया और इतना बड़ा कैंपस बना। तो ये तो बाहरी लैंडस्केप है, और इनर लैंडस्केप इसकी बड़ी आवश्यकता है। सबसे पहले मैं बहन को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें आज मौका दिया। पहले हालांकि प्रोग्राम के हिसाब से मुझे थोड़ा बाद में बोलना था, लेकिन कुछ बाबा ने ऐसी आवश्यकता हमारे लिए भेजी है कि आप लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर करने के बाद तुरंत मुझे जाना पड़ेगा आप लोगों से इजाजत लेकर। अनुभव के बारे में मैं इतना कहूंगा और आपको अच्छा लगेगा सुन के कि इसमें कोई मैं आध्यात्मिक जार्गन नहीं यूज करूंगा कि आपको लगेगा कि पता नहीं देवेश भाई क्या बोल रहे हैं। एकदम हमारे आपके मन की बात है उसको मैं शेयर करूंगा। जैसा कि बहन ने बताया मेरा प्रोफेशनल लाइफ ONGC से जुड़ा हुआ, मैं जियो साइंटिस्ट हूं। तो ज्ञान में आने के बाद या उसके पहले भी आप ये समझिए कि बाबा ने हमारा नेचर ही कुछ ऐसा बना दिया था, और जब मैं ज्ञान में आया तो हमको लगा कि लगता है कि बाबा ने पहले से ही हमको प्रिपेयर कर दिया था। तो बहुत कुछ नेचर ऐसा ही था। और उसमें क्या था, मैं जो टीम लीड कर रहा था, जिसकी जिम्मेदारी दी हुई थी, उसका मतलब था उसकी जो फील्ड ऑफ वर्क था वो गुजरात के जितने ऑयल एंड गैस वेल्स होते हैं उनकी ड्रिलिंग जो होती है उसमें जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस को वो गैदर करते हैं जियोलॉजिस्ट। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि ऑनलाइन जो वेल्स होते हैं उसकी ड्रिलिंग में करीब 30 से 40 करोड़ रुपए लगते हैं, और ऑफशोर के जो वेल्स होते हैं उसमें करीब 200 से 300 करोड़ रुपए एक वेल में लगता है। इतना इम्पोर्टेंट। उसके बाद लेकिन जब हमें पता लग जाता है तो आप समझिए कि बिलियंस ऑफ रुपीस का खजाना मिल जाता है। तो इसलिए 100-200 करोड़ कुछ नहीं। और उन वेल्स को ड्रिल करने में 1 से 3 महीने 4 महीने लगते हैं, और उसमें डेली कोई ना कोई चीजें समस्या आती हैं। तो ये जो वर्ड समस्या है, अभी चर्चा करते हुए मैं देख रहा हूँ हमारे कलीग जो चीफ जनरल मैनेजर पद से वो भी सेवानिवृत्त हुए हैं, कुबालकर जी। कुबालकर जी जरा आप खड़े हो जाएं, तो ये कुबालकर जी भी साथ हैं, ये हमारे अग्रज हैं, ये हमारे सीनियर हैं। और तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो देर इज अ यूजुअल वर्ड, सर देर इज अ प्रॉब्लम ऑन सच एंड सच रिंग। सच एंड क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। तो मैंने 2014 के आसपास की बात बता रहा हूँ, वहां मैंने अपने जब मैं ज्ञान में आया उसके बाद मैंने कहा कि देखो भाई प्रॉब्लम वर्ड मत बोलो, प्रॉब्लम के बदले तुम ये कहो सर देर इज ए चैलेंज इन वेल नंबर सच एंड सच। ठीक है, कहा ठीक है। एंड चैलेंज जो है आपको डराता नहीं है, चैलेंज क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी, जो हमारे प्रधान सेवक अपने कहते हैं, वो भी कहते हैं कोविड जैसे चैलेंज में हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देखना है। और आपको ये वी ऑल एग्री कि कोविड के दौरान जो है जिस तरह से हम लोगों ने ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू किया, अगर कहा जाए तो टॉम डिक एंड हैरी, जिसको हिंदी में कहते हैं ना ऐरे गैरे नथु खैरे, सबके पास वो जो है एंड्रॉयड मोबाइल है और सब उस पर बातचीत कर लेते हैं। अगर कोविड नहीं आया होता तो शायद हमारी ये जनता भारत की, जो कि इसमें पढ़ाई से बहुत मतलब नहीं है, ये ऑनलाइन के प्रति इनका अभ्यास होना शायद 2 दशक लगते, ये 2 साल में हो गए। सो दिस इज हाउ द चैलेंज कैन बी कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटी। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, समस्या मत बोलो चैलेंज बोलो। ठीक है, कहा ठीक। एंड यू विल लव टू नो कि मेरे रिटायर हुए वहां से 7 साल हो गए, 6 साल से ज्यादा, आज भी वो लोग चैलेंज वर्ड ही यूज करते हैं क्योंकि आदत पड़ गई है। अब आप लोग भी जब ये मान के चलें कि अगर घर में कोई समस्या हो तो आप कहो अपनी श्रीमती जी से या अपने परिवार के सदस्य से, भाई क्या चैलेंज है, कि भाई दो तो पेट्रोल ही नहीं है और सवेरे निकलना है और गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, कैसे निकलेंगे। तो कहा ठीक है, पेट्रोल की व्यवस्था करनी है ना, वो हो जाएगी। आप ये क्यों सोच रहे हो कि आप नहीं निकल सकते हो। तो दिस इज अ चैलेंज, वी शैल मीट, या बड़ी बरसात हो रही क्या करें, तो कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य रखो, रुक जाएगी। तो एक तो ये छोटा सा उदाहरण, और दूसरी चीज अगर हम सबको आत्मिक रूप से देखें ना, अब जैसे आप सारी आत्माएं हैं सामने, अब हमको ये लग रहा है कि सब तो जानते ही हैं, हम किसको क्या बता रहे हैं, जितनी चीजें हम बताएंगे उससे ज्यादा तो ये सामने सबको मालूम है। तो जब हम ये मान के चलेंगे ना, तो हमारा जो हार्मनी है, हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। और उसमें आत्मिक रूप से देखने में न किसी में कोई बुराई दिखेगी, न किसी में समस्या, जबकि हर व्यक्ति बुराई और अच्छाई का बंडल है, बुराई सब में होगी, तो आप अच्छाई देखिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊं, जब मैंने उस जिम्मेदारी को लिया यहाँ गुजरात का ये फॉरवर्ड बेस, जो कि गुजरात के वेल्स को मॉनिटर करती है, उसकी जिम्मेदारी जब मुझे दी गई, उसको L2 लेवल बोलते हैं, लेवल 2। लेवल 1 पूरे गुजरात में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, और L2 उस रीजन में, गुजरात में जो है 4 इस तरह के रीजन्स हैं, 4 रीजन में हर रीजन का एक हेड है, L1 बोलते हैं, उसके साथ 8-10 L2 ऑफिसर्स होते हैं, जो कि कोई ड्रिलिंग देखता है, कोई जियोलॉजी देखता है, कोई फिनांस देखता है, एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो L2 लेवल हुआ। तो जब वो जिम्मेदारी दी गई, तो हमारे जो प्रेडिसेसर थे, ही हैपन टू बी माई क्लास फेलो, वी डिड एमएससी फ्रॉम BHU वाराणसी जियोलॉजी में। तो वो हमको चार्ज देते समय बोले, भाई मिश्रा, देवेश, क्योंकि फर्स्ट नेम से देवेश, वो एक बंदा जो है चीफ जियोलॉजिस्ट, 25 साल का एक्सपीरियंस, वो हम लोगों के सेक्शन में दे दिया गया है, एंड ही इज अ रोग, नो डिवीजन इज रेडी टू टेक हिम, और वो हमारे सेक्शन को दे दिया गया। अब मैंने तो उसको 6 महीने तक टाल के रखा, नाउ इट इज अप टू यू, आप क्या करोगे। और वो पिछले 6 महीने से लॉन्ग लीव, मेडिकल लीव पर है। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी बता रहा हूं, एग्जैक्टली मेरे मन में आया कि 25 साल से जो व्यक्ति इतना अच्छा काम करता है, उसको एकदम से क्या हो गया कि वो 6 महीने से, वो कलकत्ता से उसको आना था अंकलेश्वर ट्रांसफर पर। मैंने पता किया, देन आई केम टू नो कि ही हैड जेन्युइन मेडिकल इश्यू। तो हमने अपनी MSG को कहा कि इमीडिएटली यू सेंड अ ईमेल टू हिम दैट ही शुड नॉट बॉदर टू ज्वाइन, पहले वो अपनी तबीयत ठीक कर ले। और मैंने अपने HR से पहले ये पता किया कि हमको कितने पावर्स हैं, हम उसको कितने समय की छुट्टी दे सकते हैं। तो हमको बताया गया कि आप उसको अनलिमिटेड छुट्टी दे सकते हैं अगर वो विदाउट पे है। हमने तो फिर क्या बताओ, अगर कोई चीज आप किसी को दे सकते हो तो उसको झेला के क्यों दे रहे हो, उसको खुशी खुशी दो यार। तो मैंने उसको बजाय मांगने के, हमने कहा जब तक आप चाहो, वो उसको मेल भेज दिया गया। अब वो खुश हो, उसने कहा यार बार बार लोग पूछता है कि मेडिकल बोर्ड ये वो, ये कौन सा बॉस आए जो कह रहा है कि आप आराम से, एंड यू विल लव टू नो, वो 1 महीने के बाद ज्वाइन कर लिया। और आपको जान के और अच्छा लगेगा, ही रियली हैड अ प्रॉब्लम, उसके हाथ ऐसे कांपते थे चाय पीते समय, कई बार प्याला गिर जाता था। तो लेकिन मैंने देखा कि उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी, और ही उसकी जियोलॉजी बहुत अच्छी, तो उसको मैंने अपने टेक्निकल सेल का हेड बना दिया, क्योंकि 25 साल का एक्सपीरियंस था। और उसको कहा कि जो भी आपका आता है प्रोजेक्ट या कुछ भी है, वो प्रपोजल पहले आप देख के तब हमारे पास भेजो। I'll tell you sirs, and सभी भाई बहनों को मैं बताऊं, इतना अच्छा वो अपना काम करते थे कि मैं क्या बताऊं। मैं 2017 में रिटायर हुआ, वो 2018 में हुए, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि देवेश मिश्रा सर को जरूर मेरे रिटायरमेंट में बुलाओ। और वो देखिए इतना बढ़िया कंट्रीब्यूट कर रहा था और किया। तो ये होता है कि जब आप आत्मा समझ के काम करो तो फिर कोई तकलीफ नहीं है। सामने वालों को जब आप ये वाइब्रेशन दोगे ना, तो आप देखो एकदम से वो आपके साथ हो जाएगा। लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, कुवालकर जी इससे एग्री करेंगे, कि हम लोग जो ACR देते हैं ना साल के अंत में, तो A+ मतलब आउटस्टैंडिंग, ए फिर बी, बी प्लस फिर बी। तो A+ का गाइडलाइन है मैनेजमेंट से कि आपको सिर्फ 10% को ही देना है A+। हमने कहा अच्छा, हमारे यहाँ जो है 60-70% बहुत अच्छा काम करते हैं, तो हम 10% को क्यों दें? तो हमने कोई नहीं, हमने शुरू से ही जो है हम अपने बॉस को और अपनी टीम को ऐसा हार्मनी में रखा, और मैंने अपने इमीडिएट बॉस को बोला, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, सर देखिए जो मैं ACR दूंगा ना, आप वो कम मत करना, आप भले मेरी ACR कम कर देना, आप उसकी ACR मत कम करना, क्योंकि हमें उनसे काम लेना है। आज उसको मैं A+ दिखा के दे दिया, आपने उसको A कर दिया, तो फिर वो तो समझ जाएगा हमको क्या पावर है। एंड यू विल लव टू नो, मैंने अपने टीम के 60% लोगों को A+ ACR दिया, और सारे ACR अफेल्ड रहे, सारे आज भी कहते हैं, और कंटिन्यूस में 3 साल तक उस डिवीजन को हेड किया, और तीनों साल उन लोगों को 50-60% लोगों को A+ दिया। एंड लेट मी डिस्क्लोज हियर, ये तो सब ओपन रहता है, वो ACR किसी का डाउन टोन नहीं हुआ। एंड ऑफ कोर्स बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हमें भी A+ मिलता रहा। तो आप किसी को क्या दे सकते हो उसको झेला के मत दो, आप देने में उदारता रखो, ऊपर वाला, आप तो ऊपर वाला उसे दे रहा है, आप हम तो माध्यम है। इन्हीं शब्दों के साथ शायद मुझे लगता है मैं टाइम एक्सीड कर गया और मुझे तुरंत निकलना भी है, इन शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि आपके लेवल में आकर ही मैंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, और आप यही मान के चले कि हर व्यक्ति, चाहे वो आपके घर परिवार का हो चाहे आपके परिचित हो, एक आत्मिक रूप से देखिए, आप भी आनंद में रहेंगे, वो भी आनंद में रहेगा।
बहुत ही सुंदर और कम शब्दों में आपने बहुत गहरी बातें हमें सिखाई, सबने सीख लिया। आज के बाद प्रॉब्लम नहीं क्या बोलेंगे, चैलेंज बोलेंगे, और किस रूप से देखेंगे सभी को, आत्मा के रूप से देखते ही क्या हो जाएगा, उदारता की भावना जागृत हो जाएगी, आप देने में आपका हाथ पीछे नहीं हटेगा। जो योगी होता है, ज्ञानी होता है, सबसे पहली निशानी उसकी यही होती है कि वो सब कुछ देता है, उससे ऑटोमेटिकली फ्लो होता है, क्योंकि जो परमात्मा होता है उसको लोग दाता कहते हैं, और हम सब उसके बच्चे हैं। हम इस धरती पर रहकर कैसे इस स्वरूप को जी सकते हैं, बांट सकते हैं, ऐसा आपने हमें बहुत ही अच्छे शब्दों से सिखाया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया भाई सुन। जैसा कि आपने इतना अच्छा अनुभव सुनाया, आज खुद आप एक अनुभव, एक अनुभवी व्यक्ति के अंदर कितना ठहराव होता है, कितनी शांति होती है, वो हम आपकी स्थिति को और अवस्था को देखकर समझ सकते हैं। मैं सबको बताना चाहूंगी, आज ही के दिन आपके भ्राता जी, जो बड़े भ्राता जी हैं, उन्होंने शरीर छोड़ा है, तो इसलिए इनको पुनः अभी निकलना होगा इसी कार्यक्रम के बाद, इसलिए आप जल्दी हमसे आज्ञा ले रहे हैं। तो आपने इतने अनुभव के साथ, कितने शांति के साथ हमें इतने अच्छे अनुभव सुनाए, ऐसी परिस्थिति होते हुए भी, यही ज्ञान और योग ईश्वरीय शक्ति का कमाल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महसूस। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। होलिस्टिक एनवायरमेंट, जब हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो हमें WHO ने इसकी एक परिभाषा दी है। पहले हम इसमें 2 एस्पेक्ट को रखते थे, फिर 3 एस्पेक्ट को, अभी हम 4 एस्पेक्ट को रखते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। जब इन चारों को मिक्स कर देते हैं तो हम उसको संपूर्ण पर्यावरण कहते हैं, या हम उसको संपूर्ण स्वास्थ्य कहते हैं। लेकिन आज हमने इसके साथ जोड़ा है इनर लैंडस्केपिंग, है ना। ये तभी संपूर्ण होगा, जैसे अभी बात किया था हमने, पूछा आपसे कि एनवायरमेंट क्या, तो हम बाहरी चीज को देखते हैं तो तुरंत हम कहते हैं कि ये पर्यावरण है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर में कुछ परिवर्तन किया जाता है जो कि बाहर हमें विजिबल रूप में दिखाई देता है। तो हम यहाँ अपने जीवन में ऐसा अंदर में क्या परिवर्तन करें जो बाहर जो विजिबल फीचर्स है, हमारा अपीयरेंस है, वो ऐसा हो जो कि एक होलिस्टिक रिलेशनशिप या होलिस्टिक एनवायरमेंट बना सके सबके बीच में। तो ऐसे ही विचार हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी बहन दियोनी जी। आप हमें बताएंगे आज के विषय के बारे में, आपका छोटा सा परिचय मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। आप पिछले 27 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े हुए हैं और लगभग 40 वर्षों से अपने आर्किटेक्चर की डिजाइनिंग की और इन सब की प्रैक्टिस करते हैं हैदराबाद में। हैदराबाद में हमारा एक रिट्रीट सेंटर है शांति सरोवर। आपको ये क्रेडिट है कि आपने वहाँ का डिजाइनिंग एंड प्लानिंग बहुत बखूबी किया है और वहाँ के उस पूरे कॉम्प्लेक्स को, या आप कह सकते हैं पूरे रिट्रीट सेंटर को, ग्रीन बिल्डिंग चैंपियन अवार्ड से भी नवाजा गया है। वो सब आपके ही प्लानिंग के कारण हो पाया है और ये अवार्ड जो मिला था वो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा मिला, और विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। आप उसमें सहयोगी रहे हैं, ये हमारा बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि आज हम आपसे सीखेंगे सुनेंगे कि हम अपने जीवन को ऐसा कैसे बना सकते हैं। हमारे बीच में आदरणीय बहन जी,
इसमें कितने आर्किटेक्ट्स हैं? कोई बैठा है आर्किटेक्ट? ओके, गुड, सर्विस आर्किटेक्ट है, गुड। आपको तो मालूम ही है लैंडस्केपिंग, और जनरल वर्ड है ये तो लैंडस्केपिंग का। How is the environment here? यहाँ का वातावरण कैसा है? और ओके कंड्यूसिव, ओके। सो हाँ, तो इन्वायरमेंट के लिए हम कितने तो भी शब्द बोल सकते हैं ना, इट इज पॉजिटिव इन्वायरमेंट है ना, और एक्चुअली इट इज टू मेनी डायमेंशनल एनवायरमेंट शब्द जो है। सो व्हाट इज द एनवायरमेंट? इट इज द कंडीशन, इट इज द कंडीशन इन विच वी लिव और वर्क, है ना। तो हमारे वर्क प्लेस में भी एनवायरमेंट रहता है, हम जहां काम करते हैं, हमारे घर का भी एक एनवायरमेंट रहता है, जहां पे भी हम जाते हैं वो एक एनवायरमेंट है। It has many dimensions, external and internal. Okay. So, what is the holistic environment? पहले किसी को ऐसा लगता होगा, holistic यानी क्या? ऐसे ही अगर हम सुने तो ऐसा लगता holistic यानी होली तो नहीं है, but holistic इसका meaning actually है total environment. अब यहां के वातावरण में, in this environment, what is included, as sister has told us, in this environment, social environment is also there, cultural environment is also there, spiritual environment is there, physical, natural environment is there. So there are so many dimensions. So holistic environment includes total environment which contributes to the overall development of the person and it shapes the personality. And from that only we can understand that from which environment this person has come. Holistic environment considers social, cultural, as I said, religious, spiritual, physical, educational, political, natural, global environment, etc. All these are interconnected. Can we separate it? Can we separate it? No. So they are interconnected, interrelated. इट अफेक्ट फिजिकल। क्यों ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट हमारे ऊपर होता है, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली। इट अफेक्ट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑल्सो फ्रॉम द बिहेवियर। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड? फ्रॉम द बिहेवियर और द एक्टिविटीज ऑफ द पर्सन वी कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट ही लिव्स इन। छोटे बच्चों से भी मालूम होता है ना हमें, चिल्ड्रेन लर्न फ्रॉम वॉट दे सी एंड वॉट दे हियर। एक मैंने अभी देखा था, टू फ्रेंड्स, एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर पे आता है अपने परिवार के साथ, दोनों को छोटे बच्चे रहते हैं, एक को एक लड़का रहता है एक को लड़की रहती है. दे वर जस्ट चिट चैटिंग हैविंग गुड टाइम विद देम एंड देन आफ्टर सम टाइम बोथ द चिल्ड्रन कम टुगेदर एंड वो दोनों हाथ छोटे बच्चे दोनों हाथ में हाथ डाल के पापा पापा वी आर गेटिंग मैरिड. अब ये बच्चों को क्या समझ में आता है मैरिज. स्टिल दे सेड नो नो वी वांट टू गेट मैरिड. तो उसके पापा हंसने लगे क्या मैरिज मालूम है मैरिज क्या होता है. तो नो नो बट स्टिल वी वांट टू गेट मैरिड. क्यों क्या होगा फिर अब क्या करोगे. तो बेटा बोलने लगा कि आई विल गेट रेडी इन द मॉर्निंग आई विल गेट अप आई विल गेट रेडी. देन डैडी आस्क फिर उसके बाद में फिर मैं नाश्ता करूंगा फिर उसके बाद में मैं दफ्तर जाऊंगा उसके बाद में मैं घर आऊंगा उसके बाद में घर आने के बाद खाना खाऊंगा फिर उसके बाद में मैं मारूंगा इसको मैं मारूंगा. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. क्या देखा होगा उसने है ना. डैडी अपने मम्मी को रोज मार रहे यही देखा है ना यही सीखा है ना उसने. इन्वायरमेंट घर का कैसा है. बड़ा होने के बाद वो भी तो वही करने वाला है फिर. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ वी बिहेव वेदर इट इज ओनली इन अवर हाउस और आउटसाइड. और एक दूसरा एग्जाम्पल जो ये तो देखने का है मैंने यानी जस्ट स्मॉल चिल्ड्रेन ऑल्सो दे ऑल्सो हियर बट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट दे आर हियरिंग वॉट वी आर डूइंग और वॉट वी आर डूइंग दे आर सीइंग अस. मेरा बेटा है तो उसकी 2-3 साल की बेटी थी मैंने बेटी है. तो एक दिन क्या होता वो उसको गुस्सा बहुत कर रहा था कुछ उसके कंप्यूटर पे वो कर रही थी तो वो बहुत गुस्सा हो गया. 2-4 बार बताने के बावजूद भी वो नहीं सुन रही थी. उसके पास से कुछ ले लिया उसने तो उसने बहुत जोर से उसको गुस्सा किया. तो ऐसा 1-2 बार हुआ. छोटे बच्चों उनको चाहिए ना जो उनके पास है मम्मी पापा के पास वही उनको चाहिए चीज तो वो लेने को ये तरह. फिर वो इतना जोर से चिल्लाया वो रोने लगी. फिर ये भी गुस्सा कर रहा था उसको तो फिर वो रोते रोते क्या बोली मालूम है पापा आपको दादी ने क्या बताया था मुझे गुस्सा नहीं करना. तो यानी उसको ही उसको सुना दिया उसका वो चुप ही बैठना पड़ा उसको. बोले आपको दादी ने बताया छोटे बच्चों को गुस्सा नहीं करना प्यार से समझाना. देखो इन्हें मैं उसको बोल रही थी तब कब उसने सुना छोटी बच्ची ने. तो हम ऐसे कभी भी कुछ नहीं बोल सकते ना बच्चों के सामने ना वो उनके पीछे क्योंकि वो आदत बन जाती है ना. तो उस एनवायरमेंट में देखो उसका प्रभाव कैसा पड़ता है उनके मन पे. बड़े होने के बाद भी वही रहेगा ना उनके मन में. हैप्पी फैमिली कब होती है जब हैप्पी एनवायरमेंट होता है. और उसका प्रोडक्ट क्या होता है कि घर में सब खुशहाली होती है हैप्पीनेस होता है अफेक्शन एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट लव अंडरस्टैंडिंग होता है. और सैड फैमिली अगर है हमेशा रोज झगड़ा चल रहा है मियां बीबी मारपीट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा सैड फैमिली होगी ना वो. तो उसका इफेक्ट क्या होगा बच्चों के ऊपर सैडनेस एंग्जाइटी डिप्रेशन एक्सेट्रा. तो इन्वायरमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द शेपिंग ऑफ अ पर्सनैलिटी. क्योंकि छोटे बच्चे ही बड़े हो जाएंगे हम भी तो ऐसे ही हुए बड़े हमारी पर्सनैलिटी कैसी तैयार हो गई है इन्वायरमेंट से ना. जिस इन्वायरमेंट हम रहते हैं काम करते हैं उसी का हमारे मन पे इफेक्ट होता है. बेटर फ्यूचर एंड बेटर टुमारो आवर मेन टॉपिक ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज बेटर फॉर बेटर फ्यूचर एंड बेटर टुमारो. सो बेटर फ्यूचर एंड बेटर टुमारो कैन बी अचीव्ड बाय होलिस्टिक एनवायरमेंट नॉट ओनली वन साइडेड. द टोटल एनवायरमेंट इंक्लूड्स द होलिस्टिक एनवायरमेंट वी वांट. द चाइल्ड पिक्स अप द हैबिट्स ऑफ पेरेंट्स फ्रेंड्स और विथ हुम सो एवर ही और शी कम्स इन कॉन्टेक्ट है ना. इसीलिए क्या बोलते हैं कि बच्चों को हमेशा पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि अच्छे के संग में रहो संग का रंग चढ़ता है. So that is why the parents always check the reputation and environment of the educational institutions also. School में डालने के time भी हम देखते हैं ना कि कैसी school है हाँ नाम कैसा है school का college का. Universities also ना we check from the universities also कि कौन सी university कौन सी रैंक पे है उसमें हमारा बच्चा जाना चाहिए, हाँ, वहां का रिप्यूटेशन कैसा है. तो दैट एनवायरमेंट एक्चुअली प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड दैट इज व्हाई द पेरेंट्स ऑलवेज चेक द रिप्यूटेशन एंड एनवायरमेंट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. स्कूल कॉलेजेस में छोटे बच्चों को जब डालते हैं तब यूजुअली पेरेंट्स बहुत सोच समझ के डालते हैं. देखो, पेरेंट्स टेल देयर चिल्ड्रेन टू बी इन द गुड कंपनी, है ना, ये तो हर पेरेंट्स बताते हैं अपने बच्चों को. और हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि एक हाथ बच्चा स्कूल कॉलेजेस में आजकल बहुत चल रहा है ना, ये वो क्या पान क्या खाते हैं ना, वो गुटखा वगैरह खाते हैं, उसी की आदत दूसरे बच्चे को भी लग जाती है ना. वो खुद ऑफर करते हैं, ये ले ले थोड़ा सा खा ले. एक बार आदत पड़ गई तो जरा मुश्किल होती है बच्चों को छुड़ाने के लिए. तो इसीलिए कोई स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग की आदत डाल जाते हैं. तो इसीलिए हमेशा पेरेंट्स केयर करते बच्चों की कि तू कहीं किसके संग में तो नहीं. और वो होशियार, यूजुअली पहले तो क्या होता था कि जो होशियार बच्चा है उसी के संग में रहना है, उसी के बाजू में बैठना है, ऐसा होता था पहले. हाँ, अरेंज मैरिजेस में भी क्या होता है, फैमिलीज देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं फैमिलीज का, उनके फैमिलीज में कोई डाइवोर्सिस नहीं है, इसमें डाइवोर्स रेट तो नहीं है, खुशहाली तो है, इनके फैमिलीज में कैसे रहते हैं लोग, सब कुछ देखने के बाद उनके घर का एनवायरमेंट कैसा है, फिर मैच करते हैं ना. देन ओनली आफ्टर दैट ओनली इन्फॉर्मेशन, आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन, एक सिर्फ उसमें से नहीं, आजू बाजू लोगों से भी पूछते हैं, उनके रिलेटिव से भी पूछते हैं, देन ओनली द मैच इज फिक्स्ड. व्हाई? क्योंकि ये पता होता है कि ये कौन से एनवायरमेंट में बच्चा या बच्ची पढ़ रही है, पल रही है. सो इन द फिजिकल एनवायरमेंट एक्चुअली बहन जी ने जैसे बताया 5 एलिमेंट्स फिजिकल एनवायरमेंट में है ही. तो इन द फिजिकल एनवायरमेंट दिस 5 एलिमेंट्स आर एक्टिव. तो दे शेप द फिजिकल एनवायरमेंट अराउंड अस, है ना. ऑलरेडी जैसे आपने यहाँ पे भी देखा है और यहीं के जैसा हमारे हैदराबाद में भी हमें एक माइन मिली थी. एक्चुअली दैट इट वॉज अ ग्रेनाइट क्वारी. तो क्वारी बोले तो नीचे ऊपर ही रहता है ना, जहां से निकाल दिया पत्थर वो एकदम गड्ढा हो जाता है. तो 40-50 फीट डाउन था तो इस क्वारी में, और क्वारी का मटेरियल वगैरह भी वेस्ट मटेरियल भी था वहां पे. तो वी हैव ऑल्सो यूज दैट मटेरियल ऑल्सो वी हैव यूज एंड द शेप ऑफ दैट लैंड वी हैव यूज टू डिजाइन द बिल्डिंग्स. सिमिलरली हियर ऑल्सो दे हैव डन कीपिंग ऑल, क्योंकि जंगल ही था यहाँ पे, तो पूरा जंगल था एंड इट वॉज नॉट विजिबल फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. तो ये भी दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज. तो एक नैसर्गिक प्रकृति का चैलेंज था आर्किटेक्ट के लिए. तो ये भी चैलेंज हम झेल लेते हैं व्हेन इन दिस एनवायरमेंट. नाउ यू फाइंड द एनवायरमेंट, डू यू थिंक दैट देयर वाज अ जंगल हियर? कैन वी इमेजिन देयर वाज अ जंगल हियर? नो, ये तो एक माउंटेन था तब, है ना, जंगल ही था. लेकिन एनवायरमेंट हमने चेंज किया, उसको इतना सुखद बना दिया कि हर कोई आके एंजॉय करता है. दे शेप द फिजिकल एनवायरमेंट अराउंड अस. द हिलॉक्स रिवर्स, ये क्या, दीज एलिमेंट्स नेचुरल एलिमेंट्स, दे शेप द एनवायरमेंट अराउंड अस. हिलॉक्स रिवर्स लेक स्ट्रीम ट्रीज सनलाइट एक्सेट्रा, दे प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन लैंडस्केपिंग. अच्छा, लैंडस्केपिंग में क्या क्या होता है? एक मैनमेड होता है, एक नेचुरल होता है. मैनमेड जैसे यहां आजू बाजू में अभी है, जो थोड़ा मैनमेड भी है नेचुरल भी है. तो नेचुरल में मैनमेड में क्या आता है, हार्ड लैंडस्केपिंग एंड सॉफ्ट लैंडस्केपिंग. जो आर्किटेक्ट्स और लैंडस्केपर्स थे उनको तो मालूम है. हार्ड लैंडस्केपिंग में क्या है, कैन यू और कैन यू इमेजिन व्हाट इज द हार्ड लैंडस्केप? क्योंकि हम दोनों का इस्तेमाल करते ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग तैयार करते हैं. देखो, हार्ड लैंडस्केपिंग पेविलियंस होते हैं, रॉक्स होते हैं, यहां पे भी रॉक्स का इस्तेमाल किया है, पाथवेज वॉकवेज मोल्ड फर्नीचर एक्सेट्रा. और सॉफ्ट लैंडस्केपिंग में होता है जो अपने को एकदम सॉफ्ट लगते हैं, आइस को भी लगते हैं. देखो, वाटर ग्रीनरी लॉन, है ना, फ्लावर बेड्स श्रब्स एक्सेट्रा, सॉफ्ट फीलिंग देते हैं हमें. सो दे आर सॉफ्ट लैंडस्केपिंग. द मैन मेड फेमस लैंडस्केप गार्डन्स दे आर विजिटेड बाय मेनी नो. कौन से आपको मालूम है ना? एक कश्मीर वृंदावन, कश्मीर का भी गार्डन है, एक ये वृंदावन गार्डन ऑफ मैसूर, राष्ट्रपति गार्डन तो फेमस ही है, वृंदावन गार्डन इज ऑल्सो वेरी फेमस. और हर सिटी में पार्क्स रहते हैं, गार्डन्स तो रहते ही है हर सिटी में. हाँ, ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स तो यूजुअली दे वेर इन द गार्डन, पिक्चराइज्ड इन द गार्डन्स ओनली. सो सीइंग द ग्रीनरी एंड ब्यूटिफुल फ्लावर्स वॉकिंग ऑन लॉन्स गिव द फीलिंग ऑफ सॉफ्टनेस ऑल्सो, कूलिंग एंड कम्फर्ट, है ना. और हेल्थ के लिए भी बोलते हैं ना कि लॉन पे वॉक करो विदाउट चप्पल और शूज. तो वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हमारे पाँव के लिए भी अच्छा है, हमारी आंखों के लिए भी अच्छा होता है. सॉफ्टनेस टू फीट, कूलनेस टू आईज. सो इसमें क्या होता है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल कूलनेस ऐसा है. कूलनेस क्या होता है, माइंड भी कूल हो जाता है ना. कूलनेस टू द माइंड ऑल्सो. देन नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ अस लिव इन फ्लैट, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन फ्लैट एंड देर इज वेरी लिटिल स्कोप ऑफ पर्सनल गार्डन और लैंडस्केप अनलेस वी हैव अ बिग बंगलो, है ना. बंगले के आजू बाजू गार्डन कर सकते हैं हम लोग. फ्लैट्स में भी क्या, तो जिसको बहुत शौक होता है वो बालकनी में रखेंगे थोड़े से प्लांट्स वगैरह, प्लांटर छोटा सा कहीं एंट्रेंस के पास रखेंगे. टू डेवलप अ गुड लैंडस्केप गार्डन वन हैज टू प्लान एंड डिजाइन इट प्रॉपरली. कहीं पे भी कुछ भी रख सकते हैं, दिस इज ऑल प्लान्ड इजंट इट. अभी आप जो यहाँ पे देख रहे हो गार्डन जो भी है, तो वो दैट इज ऑल प्लान्ड इजंट इट. कहीं पे भी कुछ रख दिया है क्या, ऐसा लगता है आपको? लगता है? सो इट इज वेल प्लान्ड, इट इज डिजाइंड. सो सिलेक्ट एंड टेक गुड केयर ऑफ प्लांट्स. वी हैव टू सिलेक्ट गुड प्लांट्स एंड टेक गुड केयर ऑफ द प्लांट्स. सो एवरी वन कांट अफोर्ड अ फिजिकल पर्सनल गार्डन. As I said that everyone is, most of the people are living in flats, but everyone has his own inner garden. है ना सबके पास garden? अभी कोई नहीं बोल सकता कि मेरे पास garden नहीं है. एक वो हिंदी में शायद अभी था ना, मेरा दिल garden garden हो गया, ऐसा कुछ था शायद, है ना. और मन, हम तो बोलते भी है ना, मेरा मन बाग बाग हो गया है. तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि सच में that inner garden is all always existing there, that landscape, inner landscaping is there. So which is that? Which is that inner landscaping? So like the physical garden, we have to take care of this garden also. Physical garden में भी आप देखो माली लगता है, हमें एक माली लगता है. माली नहीं तो पत्ते गिरते रहते हैं. हाँ, माली क्या होता है, कितनी केयर करता है, कट छट करता है. We require the gardener, isn't it? Or he takes the care of the गार्डन, है ना. लैंडस्केपिंग के लिए जरूरी होता है वो, तो उसको खाद भी देनी पड़ती है ना, पानी देना पड़ता है, अच्छी सॉइल देखनी पड़ती है और टेम्परेचर देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है जो एक्सटर्नल गार्डन है उसके लिए. और इंटरनल लैंडस्केपिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, इनर लैंडस्केपिंग के लिए, वो भी तो एक गार्डन है. फिर उसको क्या करेंगे, कौन सा पानी देंगे, कौन सी खाद देंगे? Like physical garden, we have to take care of this inner garden to make it green, attractive, with a lot of fragrance of divine virtues. है ना? Greenery बोले तो यहाँ greenery आ जाएंगे? हाँ? नहीं. See, in physical landscaping, we need good soil, water, manure for good and healthy growth of the plant. For inner landscaping also, we need all these elements to enhance the beauty. So inner landscape is watered with the love. प्यार का झरना बहता रहता है. हम बोलते हैं ना कि इसके दिल में तो प्यार का झरना बहता है ना. खुशी से झूमते थे, खुशी के फवारे फूट रहे हैं. क्यों बोलते हैं हम लोग ये ऐसे हैं? फवारे भी गार्डन में ही रहते हैं, है ना. झरना भी लैंडस्केपिंग में रहता है, तो हमारे अंदर भी तो वो है ना लैंडस्केपिंग. तो देखिए, इट इज नर्चर्ड विथ प्यूरिटी एंड पीस विच गिव्स अस अ पावर टू फेस. प्यूरिटी and peace gives a power to face, to fight against the odd. And with good wishes and positive thoughts, it spreads the fragrance of divine virtues. दैवी गुणों की धारणा से, दैवी गुण तो अपने को इनकलकेट करने हैं ना, तो ही तो हम फ्रेग्रेंस दे सकेंगे, हमारे पास लोग आएंगे। अगर हम, हमारे पास असुरी गुण होंगे, सपोज ऑलवेज वी आर क्वारलिंग, फाइटिंग विद समबडी, और जैसे पांच विकार बोलते हैं हम, विकृतियां होती है, तो कोई आएगा हमारे पास? नोबडी विल लाइक अस। सो वी हैव टू नर्चर अवर सेल्व्स विद दिस लव, विद दिस नर्चर्ड विद प्यूरिटी एंड पीस। वी हैव टू हैव द गुड विशेस फॉर एवरीवन, फॉर अस ऑल्सो, फॉर एवरीवन। सो दिस वर्चूज एनहांस द पर्सनैलिटी, सो इट मेक्स एवरीवन हैप्पी। इफ यू हैव डिवाइन वर्चूज, एवरीवन विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी, एवरीवन वॉन्ट्स टू बी योर फ्रेंड, है ना। जो अच्छा होता है उसके संग में कोई भी आना चाहता है ना। जो हमेशा झगड़ा करता है उससे दूर ही रहते हैं। Seeing a smiling face, others will also smile. It is a contagious smile. To protect our inner garden evergreen, to keep it evergreen and with fragrance, we have to protect it from harmful aspects like bad company, bad karmas. To stop bad company, harmful insects are bad company and bad karmas, vikar. And we have to protect ourselves from bad habits, bad karma and vices, which are like poisonous snakes. आपको धीरे धीरे ये मालूम पड़ेगा कि ये what are these vices? When we visit temple, हम जाते हैं ना temple में, तो क्यों जाते हैं, क्यों हमें अच्छा लगता है वहां पे? क्यों अच्छा लगता है हमें? Environment अच्छा रहता है, कैसा लगता है वहां जाने के बाद? एकदम पीसफुल, प्योर फीलिंग्स आते हैं, है ना। तो और ऐसे वो मूर्ति जो होती है उन, हम कहाँ देखते हैं हमेशा? यूजुअली मंदिर में जब जाते हैं तो चेहरे को देखते हैं, है ना। उनकी आंखों से क्या लगता है हमको कि कितना प्यार झलकता है ना, इट ओजेस फ्रॉम देयर आईज, है ना। चेहरे से क्या होता है, ऐसा लगता है कितना प्यार है ना। तो उनके अगर जड़ मूर्तियों से इतना हमें लगता है, हम तो चैतन्य है, तो क्या हम नहीं दे सकते ऐसा प्यार? कभी कभी क्या होता है कि हमारी चेहरे को देख के ही दूर भागते लोग, होता है ना, क्योंकि हमारी आंखें ऐसी होती है। यूजुअली क्या होता है, घर में भी होता है ना, एक दूसरे का देख के अच्छा अच्छा छोड़ो अभी बाद में बताएंगे इनको, होता नहीं? तो चेहरे पे सब कुछ आ जाता है। तो वी हैव टू हैव इनकल्केट ऑल दिस गुड हैबिट्स। In this iron age, everyone is having, everyone has become artificial, है ना। आजकल artificial ज्वेलरी आ गई, artificial flowers आ गए, artificial smile, है ना। वो तो बहुत पुराना हो गया है artificial smile, क्योंकि है नहीं अंदर, वो सब artificial हो गया है। तो our inner landscape has dried up, सूख गया है। जैसे बोलते हैं ना, मेरा मन सूख गया, दिल सूख गया है, बोलते हैं ना, ये भी वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ना, करते हैं नहीं करते हैं, है ना, ड्राइड अप। तो देर इज नो लव, क्यों ऐसा हो गया? जीवन ही मेरा सूखा हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि प्यार नहीं है, ना मुझे कोई प्यार कर रहा है, ना मैं किसी को प्यार कर रही हूं। तो जीवन में प्यार ही नहीं है, प्यार के झरने नहीं है, खुशी के झरने नहीं है, तो ये तो सुख ही जाएगा ना। तो देखो, देर इज नो लव, नो अंडरस्टैंडिंग, नो कोऑपरेशन, नो टॉलरेंस। प्यार नहीं है तो हम कोऑपरेशन भी नहीं करेंगे, देर इज नो टॉलरेंस पावर इन अस। सो हाउ विल इट स्प्रेड डिवाइन वर्चूज देन? सो सॉफ्ट इमोशंस, प्योर एंड पॉजिटिव इमोशंस ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, आर लाइक सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। हर एक को चाहिए ना वो, हर एक को लगता है प्यार करे, मुझे कोई प्यार करे, हस्बैंड को लगता ये मुझे प्यार ही नहीं करती, और बीबी को क्या लगता, इसको तो प्यार ही खत्म हो गया है ना, लगता है नहीं लगता है, यहाँ हस्बैंड वाइफ है ना, है उनको लगता है ना, लेकिन वैसा नहीं है। उसके पास भी प्यार नहीं है तो प्यार आपको कैसे मिलेगा, है ना। आपके पास भी प्यार खत्म हो गया है तो उसको प्यार आप कहां से देंगे? लेकिन एक सोर्स है जहां से हम सभी प्यार पा सकते हैं, कौन है वो? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्यार का सागर बोलते हैं। सागर तो कभी नहीं सूखता ना, प्यार का सागर है, वो हम तो दो बूंद के पैसे बोलते हैं हम, लेकिन वो तो सागर है, वो कितना भी दे सकता है, हमें कितना भी दे सकता है। और हमारा ये मन का बगीचा जो है वो तो बाग बाग हो जाएगा, फिर प्यार से प्यारी तो चाहिए सबको, है ना। तो सॉफ्ट इमोशंस, प्योर पॉजिटिव इमोशंस ऑफ लव, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग आर लाइक सॉफ्ट ग्रीन ग्रास विच गिव अस प्लेजर, हैप्पीनेस एंड कम्फर्ट। सो अनफॉर्चुनेटली ऑल फ्लावर्स हैव ड्राइड अप, वी आर लाइक फ्लावर्स, वी आर ड्राइड अप एंड वी हैव बिकम थॉर्न्स, थॉर्न्स, थॉर्न्स ऑफ वाइसेस, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जैसे कांटे हैं, अगर मैं किसी को गुस्सा करूं तो उसको कितना दुख होगा, कांटा अगर चुभ गया तो कितना दुख होता है, होता है नहीं होता है हा? तो ये भी तो कांटे के समान है। किसी ने क्रोध किया तो कैसा, कैसी फीलिंग होती है हमें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अहंकारी व्यक्ति के पास कोई नहीं जाता, उससे दूर दूर भागते सब लोग, है ना, कोई नहीं आता। अभी कोई कांटे पड़े हैं तो कोई जाते का रास्ता ही अपना बदल देता है ना। तो ये ऐसा ही है, अगर हमारे पास अगर ये है काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के कांटे, तो कोई हमारे पास नहीं आएगा, हम तो फिर कांटे ही बन गए हैं, है ना। हमें तो फ्लावर बना, हमारी तो मन की गार्डन है, मन का चमन है, उसमें तो कांटे नहीं होने चाहिए। गार्डन में भी कांटे होते हैं तो उठा के उसको बाजू में फेंकते हैं, फेंकते हैं नहीं फेंकते, कि वो किसी को ना चुभे। सो ह्यूमन बींग्स हैव फॉरगॉटन इट्स ट्रू वैल्यू, ट्रू नेचर। सी वाइसेस हैव टेकन ओवर द इनर लैंडस्केप एंड मेड इट अ जंगल ऑफ विशियसनेस। सो लाइक अ ग्रीड, एंगर, लस्ट, इम्प्यूरिटी एक्सेट्रा। So originally we humans are peaceful, loveful and blissful animals. In this vicious world we have neglected our inner garden. है ना, जैसे मैंने बताया कि हर एक के पास ये गार्डन है, इनर लैंडस्केपिंग है, वो हरा भरा करने के लिए अभी हमें किसकी जरूरत है, क्या जरूरत है गार्डन के लिए, क्या लगता है, पानी, हवा और मंडी, यस। तो कहां से, कौन सा पानी बोला मैंने, प्यार का पानी बोला है ना, लेकिन हमारे पास है क्या, क्रोध है ना, जो जला रहे हैं उसको, है ना, काम क्रोध की अग्नि में सब जल रहे हैं, तो गार्डन कैसा फूलेगा फलेगा। तो देखो, बट कैन वी मेक इट अ ब्यूटीफुल गार्डन एंड हाउ कैन वी, सोल हैज लॉस्ट इट्स पावर, सो हु विल रिमाइंड अस अबाउट द ओरिजिनल ब्लिसफुल, पीसफुल, हैप्पी इनर लैंडस्केप। Who will help us to inculcate all these abilities, to inculcate all these fragrances of divine virtues? See, there is only one source. Everybody knows that there is only one source from where we can get all this, isn't it? So which is that supreme power? He is our, he is supreme soul, the God, the Almighty. How can we get his help? To make inner landscaping beautiful with flowers of virtues and values, we have to connect ourselves to the powerhouse so that automatically his power will transform us into the beautiful flower. So it's possible through Rajyoga meditation. I think he knows how to take care of us, how to see. हमारा बगीचा है यानी उसका बगीचा है, वो हमारे बगीचे का माली है, है ना? तो वो ही तो ये गार्डन का सबका ख्याल करेगा. He will take care of us. तो वैल्यूज लाइक टॉलरेंस, लव, हैप्पीनेस, फॉरगिवनेस, कोऑपरेशन, पावर टू फेस एक्सेट्रा आर डेवलप्ड विथ राजयोगा एंड आफ्टर डेवलपिंग दिस ओनली वी कैन गेट सुप्रीम सोल गिव्स अस द अनकंडीशनल प्योर लव. कोई देता है क्या ऐसा निस्वार्थ प्यार? कोई नहीं देता दुनिया में. माँ बाप भी नहीं अपने बच्चों को देते. हम क्या सोचते बूढ़ा होने के बाद ये हमारी संभाल करेंगे, है ना. हर एक में छोटा भी बच्चा होता है ना, तो उसका भी प्यार उनको मिलता है, माँ बाप को सुख मिलता है छोटे बच्चों को लेके. तो सब में स्वार्थ है, सिर्फ निस्वार्थ प्यार हमें एक सिर्फ भगवान से मिलता है. इनर लैंडस्केप गेट्स पावर ऑफ पीस ब्लिस फ्रॉम हिम एंड द ओशन ऑफ नॉलेज शावर्स लव ऑन अस. सो ही इज अवर केयरटेकर, अवर प्रोटेक्टर एंड गाइड. सो ही इज द सुप्रीम फादर एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल. दिस लैंडस्केप कंबाइंड एफेक्ट each other and create the holistic environment. Only one-sided नहीं, external also and internal. So internal garden को कौन अच्छा करेगा, कांटों को फूल कौन बनाएगा? Supreme Father, Supreme Power, Supreme Soul. सो ये राजयोग मेडिटेशन से अवेलेबल होता है. तो हर एक को अगर अपनी इनर लैंडस्केपिंग अच्छी बनानी है, सूखना नहीं है अपने मन का बगीचा, तो क्या करना चाहिए? सुप्रीम पावर से, वो हमारा माली है, उससे हमें ये सब, वो ही हमें लव देगा, वाटर ऑफ द लव एक्सेट्रा, और हमारा बगीचा फिर से हरा भरा और सुखद फिर अनुभव हमें हो जाएगा और औरों को भी सुखद अनुभव हम दे सकेंगे. ओम शांति. थैंक यू फॉर लिसनिंग.
बहुत बहुत शुक्रिया देवानी बहन, आपने बहुत सुंदर हमें एक इनर लैंडस्केपिंग कितना हमारे लिए जरूरी है ये हमें बताया. आपने अपने पूरे जीवन का अनुभव हमें एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के रूप में और कुछ बातों के रूप में कुछ एग्जाम्पल के साथ हमें समझाया. आप बच्चों की दादी भी हैं लेकिन साथ ही साथ अभी आप कार्यरत भी हैं एज अ डायरेक्टर. आप अर्बन आर्ट्स आर्किटेक्चरल फॉर्म हैदराबाद को रन करती हैं, उसको देखती हैं. और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जब हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, हमारा कनेक्शन हो जाता है, तो अंदर में इतनी ग्रीनरी हो जाती है, इतना सुखद और शक्ति से भरपूर वातावरण हो जाता है कि हम मजबूर हो जाते हैं या नेचुरल हो जाता है, जैसे हमने कहा वो फ्लो हो जाता है. तो दो बातें हमने सीखी हैं जो कि आज हम यहां से लेके जाएंगे. तो सबसे पहले हम यहां के एनवायरमेंट को होलिस्टिक बनाते हैं. बनाएंगे आप सभी? ठीक है, शुरू करें या हो चुका है? शुरू हो चुका है. ठीक है, तो अभी अभी हम इसका प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देखते हैं. हम सभी हमारे आजू बाजू बैठे वाले साथियों को देख लें एक बार, कौन कौन आपके साथ बैठे हैं. ठीक है, अब हमें करना क्या है? जो आपके साथ बैठे हैं उनके साथ बड़े प्यार से हाथ मिलाना है. अभी हाथ मिला सकते हैं और हाथ मिलाते हुए बोलना है कि आप बहुत अच्छे हैं. अभी आपने कहा ना कि प्यार देना है सबको. आप बहुत अच्छे हैं, कहा आप सभी ने? आपने कहा प्यार से बोला सभी को? इधर में बोला, बोल दिया ना. अच्छा, जब आपने बोला हो आप बहुत अच्छे हैं तो उन्होंने क्या बोला? यही बोला ना. ये तो नहीं बोला कि आप तो अच्छे नहीं है ना? आप बहुत अच्छे हैं. तो जब हम जिसको जो देते हैं, जैसे देते हैं वैसा ही हमें मिलता है. तो अभी कहा कि हमारे अंदर प्यार खत्म हो चुका है, ये हम सभी जानते हैं. लेकिन हम सभी ऐसे तो जरूर हैं, है ना, कि हमें चाहिए तो सभी को. तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? लॉ ऑफ नेचर है कि जो फल हमें चाहिए वो बीज हमें बोना पड़ता है. हम सब ऐसे तो हैं लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है. तो यहां से हम होलिस्टिक एनवायरमेंट के लिए इनर लैंडस्केपिंग में ये चीज लेकर के जाएंगे कि जब जब मुझे जो चीज चाहिए होगी वो मुझे पहले देनी होगी और देनी चाहिए, है ना. दूसरी चीज जो हमने बात की, हमारे मन के अंदर शांति होनी चाहिए. अब शांति असल में है क्या? क्या है पीस? क्या है अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे कर सकते हैं पीस? है जी, अननेसेसरी थॉट्स जब ना आए तो उसको हम पीस कहते हैं. और सेटिस्फेक्शन को हम पीस कह सकते हैं. और मन उथल पुथल ना हो. ठीक है, चलो मैं छोटी सी आपको बात सुनाती हूँ जब तक ये सेटिंग होती है. सपोज आपके पास दो पेंटिंग्स हैं, ना, दो पेंटिंग्स रखी हैं. एक पेंटिंग ऐसी है जिसके अंदर पहाड़ दिखाए गए हैं, झरने हैं, पेड़ हैं, उस उन पहाड़ों के ऊपर भी है, नीचे जो पानी बह रहा है उसके आसपास भी है, चारों तरफ बहुत सारे पंछी चहक रहे हैं और एक जोर से तूफान चल रहा है. और जो तूफान चल रहा है उसमें जैसे बताया कि पेड़ है, पंछी हैं, तो कुछ पंछियों ने घोंसले भी बनाए हुए हैं पेड़ों के ऊपर. और उस घोंसले के अंदर पंछी बैठा हुआ है अपने बच्चों के साथ. एक ये पेंटिंग है. एक और पेंटिंग है, उसमें भी सेम वही सीन है, झरने हैं, पहाड़ है, पेड़ लगे हुए हैं, पंछी हैं, पंछियों की आवाज है, लेकिन वहां पे कोई तूफान नहीं है, एकदम से सूदिंग वातावरण है उस पेंटिंग के अंदर. सपोज आपके सामने ऐसे दो पेंटिंग्स लगी हुई हैं, पहली वो जिसके अंदर तूफान है, दूसरी वो जिसमें सब कुछ वही है लेकिन उसमें तूफान नहीं है.
तो कौन सी पेंटिंग में आपको पीस नजर आ रहा है? पहली वाली में? अच्छा, पहले वाली के साथ कौन कौन है? अभी तो ज्यादा आवाज तो पहले वाले की आई थी, लेकिन हाथ खड़ा किया सिर्फ 3-4 ने। अच्छा, दूसरे वाले में कौन कौन है? दूसरे वाला जिसमें तूफान नहीं है, एकदम सूदिंग है, बाकी सबको लगता है कि उसके अंदर शांति है। जो कहते पहले वाली में शांति है, तूफान भी है, उन्होंने क्या सोच के कहा? राइट, कुछ नहीं होने वाला है। और तीन ही हाथ थे, पीछे से भी कोई और था? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने राइट आंसर दिया, जो पीस है वो किस में था? पहले वाली पेंटिंग में, जिसमें तूफान भी है। होता क्या है कि हमें लगता है कि शायद सभी सिचुएशंस नॉर्मल है, आसपास सब कुछ ठीक है, इसको शांति कहते हैं। लेकिन अध्यात्म सिखाता है कि शांति ऐसे वातावरण तो हमें हो सकता है कभी भी हर जगह ना मिले, तूफान तो आता ही रह सकता है, कभी घर में कभी बाहर। तूफान को ऐसे बहुत बड़े बड़े तूफान नहीं, कभी बातों के तूफान, कभी अनुभवों के तूफान, कभी छोटा कभी बड़ा, ना ऐसे ऐसे तूफानों से हम गुजरते हैं। लेकिन उनके बीच में रहते हुए भी अगर हम अपने मन को, जिसे कहा कंट्रोल्ड थॉट्स हैं हमारे, हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को सहेज कर चल सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं, साथ ही साथ हम दूसरों का सहारा बन सकते हैं। क्योंकि वो पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया उस घोंसले में अपने बच्चों को सहेज कर बैठी हुई है, तूफान भी चल रहा है लेकिन उसने अपने बच्चों को संभाला हुआ है उसके अंदर, तो वो है रियल पीस, ना शांति। बहुत से लोगों को, किसी को मंदिर में अनुभव होती है, किसी को घर में, कोई नाराज होके कमरे में भी बंद हो जाते हैं, वो भी एक शांति होती है। कभी कभी हम ऐसे विपरीत परिस्थिति जाते हैं, जैसे कोई शमशान घाट जाते हैं, वहां भी शांति होती है, जंगलों में भी शांति होती है। शांति कोई एक तरीके की नहीं होती, कई तरीके की होती है, लेकिन ये सब तो बाहरी शांति है जो हमें वातावरण दे रहा है, ना? मैं कमरे में बंद हो गई हमेशा तो नहीं हो सकती, ना? नाराज नहीं रह सकती, हमेशा जंगल में नहीं रह सकते, हमेशा शमशान घाट में नहीं जा सकते शांति अनुभव करने के लिए। लेकिन हम सबके अंदर अगर वो इनर पीस है, वो फीलिंग है, वो समझ है, तो हम कैसे भी वातावरण में अपने मन को शांत रख सकते हैं। तो इनर लैंडस्केपिंग ऐसे भी हम अपनी अच्छी बना सकते हैं। तो आइए अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर चलते हैं। लेकिन बहुत ही विशेष हमारे बीच में एक अनुभव हम लेकर के आ रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं भ्राता प्रोफेसर AD सिद्धेश पांडे जी। आप बहुत ही अनुभवी हैं, आपने मास्टर्स इन आर्किटेक्चर IIT खड़गपुर से किया हुआ है, आप आर्किटेक्चर एसोसिएशन मालेश्वर बेंगलोर से कार्यरत हैं, कर रहे हैं अभी भी, और पिछले 46 वर्षों से अपनी ये सेवाएं दे रहे हैं। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है, डिजाइन किया है, लाइक हाउसिंग लेआउट, रेजिडेंशियल, होटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऐसे बहुत तरह के डिजाइन आपने किए हैं। और आपने रिवाइव किया है एक सिख इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जिसके लिए आपको इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से नवाजा गया है 1993। ये बहुत ही अच्छी बात है हम सभी के लिए। आपका जीवन, ऐसे बहुत सभी की हॉबीज होती हैं, भाई सब की एक हॉबी है कि कुछ पुराने स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, उसको साइंटिफिकली एनालाइज भी करते हैं। जब जैसे कोई साइंस पढ़ता है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, तो वो कोशिश करता है जब हम एक नई चीज को अपने जीवन में लाएं, जैसे अध्यात्म को लेकर के आए, तो उन दोनों को कोरिलेट करें ताकि उनका फायदा हम खुद भी ले सकें और हम दूसरों को भी बांट सकें। तो मेरा भाई सबसे आग्रह है कि आपने जीवन, आप आज हमारे सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को अपने वक्तव्य से व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करें वो बताएं, क्योंकि बिल्डिंग का निर्माण तो आपने बहुत बार किया होगा, करेंगे भी, लेकिन एक सही व्यक्तित्व कैसे बन सकता है, आज उसके विषय में एज अ चेयरपर्सन हमारे सेशन के अपने आशीर्वचन हमें दीजिए भाई।
आई वुड लाइक टू टॉक इन इंग्लिश, माई हिंदी इज नॉट दैट फ्लुएंट, आई होप you will excuse me for that. I am basically from Bangalore. I am a Kannadiga. एंड आई डिड थीसिस ऑन वास्तु शास्त्र द रियल आर्किटेक्चर टुडे. डू यू बिलीव इट? बिकॉज देर इज लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन अबाउट द वास्तु शास्त्र. मेनी पीपल ऑलमोस्ट इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटी दे कम एंड टेल यू पानी वहां रखना, अग्नि वहां रखना, ये यहां है, वो वहां है, पिरामिड रखो, लाफिंग गणेशा रखो, लाफिंग बुद्धा रखो. दिस इज नॉट एट ऑल आर्किटेक्चर. देन व्हाट द टुडेज आर्किटेक्ट इज प्रैक्टिसिंग, इज इट आर्किटेक्चर? दिस इज ऑल्सो नॉट एट ऑल आर्किटेक्चर. फोर वॉल्स एंड अ रूफ विथ सम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड, यू मीन टू से इट बिकम्स आर्किटेक्चर? अ मेस्त्री कैन डिजाइन अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग. एन ऑर्डनरी मेसन कैन बिल्ड अ नाइस बिल्डिंग विथ हिज ओन एस्थेटिक्स. वेन एवर द क्लाइंट कम्स टू मी वील आस्क हिम और आस्क हर, what are your requirements? They give the requirements. In the end they say, sir, my building should be more beautiful than the neighboring one. But beauty is not the only thing, or aesthetics is not the only thing in architecture. Then what is architecture, or why architecture? Why architect? Is it necessary to have hire an architect by paying few lakhs for the building, apart from the construction cost? What is the necessity of an architect? Before this, I would like to ask you some questions. You please try to answer. We are wearing the dress. We are all wearing the dress. Is it required? Tell me please. Yes? Yes. It is required for what? No, that is not the answer. To protect ourselves from sun, wind and rain. Okay, my next question. The polar bear with minus 42 degrees temperature, which is living happily, is it wearing anything? Minus 42. The jungle animals, are they wearing anything? Are they not happy? If the elephant gets a cub, the baby will have a fixed life of 95 years. Guaranteed, unless it meets with an accident or somebody kills it. Even the aquatic animals, the life is guaranteed. If tiger gets a cub, 22 to 25 years, the life is fixed. Now you tell me about the human being. Can you tell me one ailment with a jungle animal? I am not talking about the dog in your kennel. Dog in your house, or the guy in your gotha. The jungle animals, they don't have a single ailment. I got the statistics from Amazon to Alps to Himalayas. How is it possible? Can anybody tell me the life of a newborn baby? You talk about any ailment, it is only with the human being. Why? Can anybody try to give me any answer? Yes? Sorry, man was also once upon a time, he was an animal.
Animal,
yes. Yes, but he was happy. No, no. The main cause is, I am wearing a banyan, there is a cover, one more cover shirt, and if there is a thandi, I wear something else. And above all this, architect has given you one more cover, keeping you away from the nature, the five elements, which will create the internal landscape within the building. But by creating four walls and a roof, the required natural elements, bhumi, aap, tejo, vayu, nabha, if I talk in this way, you will poo-poo me as pandit. The same thing if I tell you in English, you will accept it as a science. The earth will give you gravitational and magnetic energies. Aap will give you the hydro energy. The teja, light and heat, will give you electromagnetic and thermal energy. The vayu will give you wind energy. The nabha, the sound, which is a very, very important in our life. You might have heard of that story. The first organ to develop in woman's womb for a child is ear. You know the story? I think many of you know. No, you know, you have forgotten. Abhimanyu. That story, how the way Krishna, he stops it. This is because somebody was hearing it, listening to it. Therefore, these five elements, which are the energy sources, which are outside the building, how to take them in the required quantity, quality, is the science of Vastu Shastra, but not in today's architecture. I am very, very sorry to tell you. Today we are following Le Corbusier, we are following very famous architects, Frank Lloyd Wright. They never talked about the, or they never implemented the principles of the real architecture, which have been told almost 2500 years back in our science by rishis. This is what I wanted to convey to you through some slides, and this is the continuation of my thesis, which I did at IIT Kharagpur almost 49 years back. I came out in 1974, and I have been practicing this, and the application is superb, very, very scientific. Architect is a doctor for the life of the whole family. How to induce the required energy for the activities to make them efficient. If a particular person is not efficient, it is possible to make them efficient. How is it possible? These energies will play a very, very important role. I have written a book on that recently. I mean, it was launched, where even the clients, they have given their testimony, how they experienced after the application of this science. Okay, with kind permission, madam, I will go for me. Please get up. You have got time now? Please. Otherwise, I would like to stop it, because I told you what is Vastu Shastra. The first cutting, these are all collections. Only one I am showing it here. I got more than 50 such cuttings about the scientific reports. 95% of the world is unhealthy. See, the scientists wanted to say 100%, because it is not possible to suddenly say or straightway say 100%. Therefore, they have said 95% of the World population is unhealthy. What does it mean? And why? Sorry, what happened? This one is it? Man was an animal. He was a social animal. Then ultimately, he came and sat under the shelter with all his dresses, wearing all the dresses and keeping away from the nature. This is a very, very important statement. Man has got three qualities. We call them as Rajas, Tamas and Sattva. What is Rajas? Rajas is concerned with the kinetic energy in human being. Tamas is potential energy. Sattva is the buddhi, the consciousness, his interest in a particular subject, where Adhyatma and Vijnana, they will come into picture. In Adhyatma, there is Bhakti Marga and Jnana Marga. And I am very, very happy. I am in the Gyan Sarovar, where I am really experiencing the Jnana Marga, how it is flowing. That the environment here itself is attractive. Feel like not to leave this place. Here, the Rajas quality, the kinetic energy requires the spatial space, spatial requirement, not special, spatial requirements. The Tamas will demand the physical requirements, like the fan, the table, the chair. And the last one is the spiritual Sattva, which requires the mental stability. How to find it? How to attain it? How to get it within the physical object? What do you call object in your language? An object. This is an object. Vastu. Therefore, the building is a Vastu, which has got a science called Vastu Shastra. Here, the Rajas demands the what you call the space, how you are going to organize. That is especially the tantric techniques. You have to assemble them. You have to assemble them. For that you require various parts. The Rajas demands the various elements, and that will create the required that size critical parts. The next is Mantra Jnana, where Mantra Jnana is Sattva, which plays the mathematics a very, very important role. And the last one is you are creating the machine, where you are energizing, where you are filling it with Atma or the energy. Therefore, these three which are required in human being, the same way like in any machine. Ultimately, you have to energize the human being for his good work, good behavior, good habits. Man is controlled by the five elements, which I told you earlier, which are the energy sources. Bhumi, Aap, Tejo, Vayu, Nabha. And these five energies are given away by the sun, the only sun. The sun will give you these energies on the earth which we are enjoying. But unfortunately, human being is not taking the sufficient these energies to keep himself happy. How? I'll tell you next. And these energies, the elements, Bhumi, Aap, Tejo, Vayu, Nava, which are required in the human body inside, the real internal landscaping is here. After taking the food, food will go to the gullet, through the throat, stomach, then which creates the enzymes. Then the enzymes will go to the duodenum, that is Pittashaya, then small intestines, then in small intestines it becomes a child. That child has got all the five elements in different form. That is the solid annam, which will form the solid tissue forming. The food will help in forming the tissues in the body. The liquid will create the blood. The heat, that is light and heat, will create the metabolic heat. The vayu, which will create the pushing, the biomotor force, the energy which is required in the body. And the last sound, which creates the consciousness. Therefore, these five elements which are outside the building, in the nature or in the environment, they are very much required for the human body to balance his total living style. Well, now coming to the internal landscape for the better future. Very, very important. Whenever the client comes to us, he will give the requirements, 3-bedroom, 4-bedroom, or even a workshop, industry, the requirements are there, hotel, the big hospitals. They give the complete requirement. But we can't just distribute the spaces wherever we require. Oh, east, you put some 5 bedrooms of the hospital or 5 wards of the hospital. West, you put something, operation theater. Or north, you put the administration. Why the directions? What are their role? How they play in creating efficiency? How they play creating efficiency in human being, which is an important feature? Here, I have shown a physical object A, B, C, D, E, F, G, H. Center is O. And this is orienting towards north. Therefore, right side is the east, left is west, down is south. Okay? We know the sun moves around the earth east-west. Am I right? No. Sun doesn't move. Earth moves. Earth rotates. Because of the earth, we get the east direction and west direction. Considering A, C, D, E, F, O, which is on the eastern side, which will get particular amount of light and heat. Same way, A, B, O, F, G, H, the western side of the building, Vastu, that will get kind of heat and humidity, ventilation, everything. Now you tell me, is there any difference between eastern zone and western zone in heat? The east will get up to 12 o'clock one particular heat, and after 12 o'clock the heat will be more, especially between 1:30 and 2:30, and that heat will be on the western zone. That means western portion is hotter compared to the eastern zone. The same way, if you consider, analyze all these five elements, you find the humidity, the up will be different in the eastern zone and western zone. The heat, the energy levels will be different. The light, electromagnetic energy levels will be different. And when you analyze the northern portion and the southern portion, that is A, B, C, D, O, H, which is on the northern side, when the sun is on the Uttarayanam or Tropic of Cancer, it gets a different environmental condition, and the southern one, H, O, D, E, F, G, when the sun is on the Tropic of Capricorn or Dakshinayanam, the environment will be completely different. If this is so, how can we just shove in the activity whatever we feel like, wherever we want? The complete environments are different. If you analyze the each quadrant, then the B, C, D, O will be northeast. We call it as Ishanya, a specific name. Northeast doesn't have any meaning. No meaning at all. Any child can call it the northeast because it is between north and east. The same way, D-O-F-E or D-E-F-O, the southeast is different, called as Agneya. The next is Nairutya. Then the top is Vayavya. What does it mean? See, that each quadrant has got the different composition of these five elements. I've got the case studies. Therefore, in each quadrant, human's behavior will change. Man's behavior will change. Yes? Oh, yes, central point. Hello, I am talking about the quadrants. Huh? What is that?
What is the O? What happens
in O? No, no, no. O is the letter. O is the letter like A, B, C, D. O is... No, sorry. No, that is not the Brahmasthana. I will tell you. Oh, acha, you are referring to the Brahmasthana. That is not Brahmasthana. Or that is not the only Brahmasthana. Sorry. Anyway, coming to the quadrants, the each quadrant gives you the different environmental condition. Therefore, based on Rajas Tamas Sattva, we have to select the quadrant and place them and create the efficiency in that activity. For example, northeast, that is BCDO. BCDO is what we call Ishanya. Why Ishanya? My dear friend, there is no God in it. But the energy, whatever you are having, is very, very conducive for the development of the brain, because you get the UV rays. UV ray will enter into the body, early morning rays, and forms a hormone called calciferol. If there is any doctor, I think they should be knowing. Hormone called calciferol. And that calciferol will in turn forms the vitamin D. in the body and stimulates the brain. Same way, each quadrant has got the different color effect, and that will stimulate the brain accordingly. Coming to the Vayavya, northwest, ABOH. ABOH is basically, which is called as a Vayavya, is to develop the physical form. The man in that, he will be definitely worried about his health, human health. The same way, all the four quadrants, and also coming to the nine houses, earlier I discussed about the four houses. Here again, each quadrant plays a different role with respect to its composition of the energies. And the next one I did with the 81 houses. 9 into 9, 81 houses. And the each vibhaga or division will give you the different energy levels. Therefore, these energy levels, how we should make them with a specific usage, for a specific usage, what exactly you want to boost up the energy in which activity, is the science of Vastu Shastra. Therefore, I don't want to take much of your time, whatever the time, short time has been given. In that, I have tried my level best to explain it to you. But this has helped enormously. We have even revived more than 7,500 Sikh industries. Any industry, we say it became Sikh because, you know, they swallowed the money or the workers didn't work. Why? With the same workers, with the same management, we enhance the efficiency of the institution. Therefore, with this, I would like to end up this small session, and thank you very much, the Brahma Kumaris, this particular Gyan Sarovar, and I am very much overwhelmed by this environment, and I would like to thank you all. Thank you once again.
थैंक यू भाई सर. आपने आर्किटेक्चर को वास्तु के साथ जोड़ करके एक नई साइंस हमें पढ़ाई. एंड ही टोल्ड अस दैट देयर इज नो गॉड बट इट हैज अ पर्टिकुलर एनर्जी विच हैज एन इम्पैक्ट इन आवर ब्रेन. तो हम लोग कुछ भी चीज ऐसे रखते हैं, कुछ भी चीज को साथ में कनेक्ट करते हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं हमारे पास एक एनर्जी आती है. तो अभी हम एक सुप्रीम एनर्जी जो हम सभी जानते हैं वो है परमात्मा, उसके साथ अपने मन को कनेक्ट करेंगे. तो रेडी हैं सभी उसके लिए? चलिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे. बहुत देर से हम बैठे हुए हैं. हमारे जीवन में मेडिटेशन क्या इम्पैक्ट डालता है, उसकी एक छोटी सी हम एक्टिविटी करेंगे. हम सभी थोड़ा सा बीच में गैप बना लेंगे और अपने राइट हैंड को आगे करते हुए ऐसे थंब आगे करेंगे. पीछे ना देखते हुए हम हाथ को लेकर के जाएंगे जितना ले जा सकते हैं. अपने गर्दन को मोड़ेंगे नहीं, हाथ लेकर के जाएंगे. हाँ, थोड़ा स्पेस बना करके राइट हैंड को राइट साइड पर लेकर के जाएंगे. कुछ लोग लेफ्ट साइड लेकर जा रहे. अब आप देख लीजिए आपका कहाँ तक हाथ गया है. अब आप देख सकते हैं हाथ यहां तक है, राइट. अभी हम सेम ऐसा लेफ्ट हैंड के साथ करेंगे. लेफ्ट थंब को पीछे लेकर के जाएंगे. ओके, अभी हम पीछे मुड़ के देखेंगे कि हमारा थंब यहां तक आया है. ओके, तो अभी हम सब बैठ जाएंगे. थोड़ी सी एक्सरसाइज हो गई है. क्या हुआ बाद में देखेंगे हम. तो दो मिनट के लिए हम मेडिटेशन करेंगे क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेशन भी हमें ज्वाइन करना है. आराम से बैठिए रिलैक्स होकर के. अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए
पूरा ध्यान अपने तरफ केंद्रित करेंगे। और महसूस कीजिए इस एकांत वातावरण में, इस कमरे में केवल आप बैठे हैं, अकेले, शांत, एकांत। और अपने शरीर में ध्यान केंद्रित करते हुए मन को मस्तक के बीच केंद्रित करें। ट्राई टू फोकस योर एनर्जी इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड एंड ट्राई टू सी दिस पॉइंट ऑफ लाइट लाइक द शाइनिंग स्टार स्पार्कलिंग in the center of forehead. This is me, I, the energy in the form of light is the master of this body. मैं शरीर की मालिक एक आध्यात्म शक्ति हूँ। जो शरीर के अंदर एक सुंदर वातावरण, संपूर्ण वातावरण को बनाती है। ये संपूर्ण वातावरण सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता से मिलकर बनता है। मैं महसूस कर रही हूँ इस समय मेरे अंदर संपूर्ण शांति का संचार हो रहा है। और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए स्वयं परमात्मा मेरे सामने है। परमात्मा जो प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, शक्तियों का सागर है, वो मुझ अपने बच्चे को अपने इन वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। उनके प्यार की किरणें मुझ बच्चे पर, आत्मा पर बरस रही है और मेरा जीवन प्यार से भरपूर हो गया है। परमात्मा शक्तियों का सागर है, उसकी शक्ति रूपी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं शक्ति से भरपूर हो रही हूं। शांति, सुख, अनेक तरह के वरदान आज वो मुझे देते ही जा रहे हैं और मेरा जीवन, मेरा मन बाग बाग हो गया है। परमात्मा की शक्ति और पवित्रता मेरे संपूर्ण स्वास्थ्य का निर्माण कर रही है। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। सभी ने अनुभव किया, रिलैक्स हुए सभी, थोड़ा। चले पुनः खड़े हो जाते हैं फिर से। हमारी एक्टिविटी अधूरी थी अभी. अभी हम फिर से राइट थंब को आगे करेंगे और पीछे लेकर के जाएंगे. जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाइएगा. ले गए सभी? अब पीछे मुड़ के देखें, डिस्टेंस बढ़ा, बढ़ गया. ओके, लेफ्ट साइड से भी ट्राई करेंगे. जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएंगे. अभी देखेंगे डिस्टेंस बढ़ गया. बढ़ा सभी का? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ मेडिटेशन. इसलिए कहते हैं कि अगर किस्मत आजमाते आजमाते थक गए हो, अगर किस्मत आजमाते आजमाते थक गए हो तो कभी खुद को आजमाइएगा, नतीजे बेहतर होंगे. अभी इतना सुंदर सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. और हमारे चेयरपर्सन को हम एक छोटा सा ईश्वरीय सौगात यहाँ की तरफ से भेंट करते हैं, ताकि एक याद स्वरूप में अपने साथ आप इसको लेकर के जाएंगे. थैंक यू. आदरणीय दियोनी बहन जी, आप कृपया भाई सबको ये सौगात दीजिएगा. ये परमात्मा का सुप्रीम पावर का चिन्ह है. ये हमेशा ऐसे शक्तियां बरसाता रहे हमारे ऊपर. थैंक यू वेरी मच. आप सभी अपने नेक्स्ट सेशन में पहुंच सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. ओम शांति.